यक्षमानो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ न अन्यत्र करदण्डयो यक्षमानो अश्वमेधेन जातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ न यत्र न अन्यत्र करदण्डयो कर्मदण्डयो न करदण्डयो यक्षमानो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ न अन्यत्र करदण्डयो पढ़ो भाई नहीं है कोई पढ़ने के लिए 32
यक्षमानो
अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदण्डयो यक्षमानो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया लाजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदण्डयो यक्षमानो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदण्डयो शब्दार्थ यक्षमानः संपन्न करने की इच्छा करते हुए अश्वमेधेन अश्वमेध उत्सव द्वारा ज्ञातिद्रोह स्वजनों से युद्ध जिहासया मुक्त होने के लिए राजा युधिष्ठिर लब्ध धनः कुछ धन प्राप्त करने के लिए दध्यो विचार किया न अन्यत्र अन्यथा नहीं कर दंडयो लगान तथा जुर्माना। अनुवाद इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था और तथा और कोई निधि न होने से राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से वे अधिक धन प्राप्त करें जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेशानुसार संपन्न करना चाह रहे थे। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। इससे पहले वाला श्लोक किसने लिया था? उसने लिया था लेक्चर। परसों किसने लिया था? कल तो प्रभुपाद जी का लेक्चर हुआ, परसों किसका हुआ था? परसों मेरा हुआ था, परसों हुआ नहीं ना, तो फिर 32 कैसे हो गया? 30 हुआ ना, तो 31वां ही बाकी है ना। ध्यान रखा करो कौन सा श्लोक है। 31 और 32 दोनों श्लोक ले रहे हैं। सराज पुत्र व्यवृद्धे आशु शुक्लो इवोडुपः आपूर्यमानः पितृभिः काष्ठाभिः एव स अन्वहम्। सराज पुत्रो व्यवृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमानः पितृभिः काष्ठाभिरिव स अन्वहम्। सराज पुत्रो व्यवृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमानः पितृभिः काष्ठाभिरिव सो अन्वहम्। शब्दार्थ सह वह राजपुत्र राजपुत्र राजकुमार बब्रधे बड़ा हो गया। आशु जल्दी ही शुक्ले शुक्ल पक्ष इव सदृश उडुपः चंद्रमा आपूर्यमानः विलासपूर्ण पितृभिः पिता जैसे संरक्षकों द्वारा काष्ठा भी पूर्ण विकास इव सदृश सह वह अन्वहम् दिन प्रतिदिन। अनुवाद, जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय, हाँ तात्पर्य इसमें है नहीं, तात्पर्य आगे वाला हम पढ़ चुके हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हाँ भाई, क्या समझ में आया? हाँ आगे बोलो, कौन चाचा था, उनमें कौन था, वो थे इकतीसवें श्लोक में 32वें में जिसमें से जो भी समझ में आया वो बताओ। चाचा ताऊ तुमने बोला, कौन चाचा थे, कौन ताऊ थे, कौन थे पिता समान? युधिष्ठिर महाराज पिता समान थे। किन के पुत्र हैं परीक्षित महाराज? अभिमन्यु, अभिमन्यु किन का पुत्र है? अर्जुन का। तो अर्जुन क्या लगे उनके दादा? तो पिता समान हुए, वो दादा समान हुए। और क्या समझ में आया? क्या हुआ उनका पिता समान होने के कारण? कुछ समझ में आया? और 32वें से बोलो अभी। अरे बोल, 32वें से बोलो। अरे मुंह से आवाज बाहर निकाल, होठों को क्या चला रहा है, खाली बोल। ध्यान किधर था तेरा? हाँ भाई निताई, क्या समझ में आया? निताई कुछ समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो ना बोलो, समय क्यों नष्ट कर रहे हो? कुछ समझ में आया? अरे बोल, कुछ समझ में आया? नहीं आया ना तो सीधा बोल देने का, नहीं आया बात खत्म हो गई। दूसरे का भी नंबर आना चाहिए ना, और भी लोग हैं। हाँ भाई नरसिंह प्रभु, क्या समझ में आया?
मेरे पाप कर्म से मुक्त हो। तो जैसे ब्राह्मणों का कथा कीर्तन करके आजीविका चलते थे, वो कुछ भी दान में बैठ जाते थे, वैसे ही राजपूत क्षत्रिय लोगों को कर वगैरह लेके आजीविका चलते थे।
वेरी गुड, तालियां बजाओ सर। हाँ कपिल मुनि जी, कुछ भी नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? अच्छी बात है, ऐसे बता देना चाहिए भाई, कुछ समझ में नहीं आया, समय नष्ट नहीं होता उससे। हाँ भैया उत्तम मोहन प्रभु जी, अभी ध्यान से सुन लेना, प्रभु जी बता रहे हैं, जिन जिन को समझ में नहीं आया मैं पूछूंगा फिर। हाँ, पिता समान है, बड़े लोग हैं वो किसके समान है, किसके समान है जो बड़े लोग हैं? हाँ, पिता समान है, पिता समान देख रेख में। हाँ, पिता पिता समान लिखा है उसमें क्या? जो पितामह है किसकी समान है? पितामह, दादा कहते हैं उनको। आगे बोल। समझ में आया भाई तेरे को? कुछ समझ में आया इन्होंने जो बताया तेरे को? कुछ समझ में आया नहीं आया तेरे को? समझ में आया कुछ बता, क्या समझ में आया? समझ में आया तेरे को कुछ अभी इसने जो बताया? क्लियरिटी नहीं मिल रही है तेरे को? कुछ क्लियरिटी मिली बता। अच्छी बात है, तालियां बजाओ। जय राम जी की। समझ में आया कुछ बताइए। समझ में आया कुछ सुनाओ अभी। वेरी गुड। बहुत सुंदर, ताली बजाओ सब इनके लिए। त्यागी जी को समझ में आया? प्लीज
परीक्षित महाराज का जन्म हुआ पालन पोषण उन्होंने उनके पितामह और चाचा श्लोक में जो युद्ध में उनको जो पाप का भागीदार हुए थे तो उसके लिए उनके पितामह ने उनको बताया कि आप अश्वमेध यज्ञ करें, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन न होने के कारण वो उससे चिंतित।
वेरी गुड, तालियां बजाओ। सोहनलाल जी,
जैसे शुक्ल पक्ष में चांद धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वैसे ही परीक्षित महाराज अपने पितामह समान पांच पांडवों के संरक्षण में धीरे धीरे ऐसे ही सुंदर तरह से ग्रो कर रहे थे। और 32 में तो मैंने सुना है, इतना जो समझ आया कि अपन जो महाभारत के युद्ध के बाद जो वहाँ से जितने भी सबका संहार हुआ था, उसके बाद पांडवों को ऐसा लग रहा था कि उनके उनसे बहुत पाप हो गया है, तो उस पाप को खत्म करने के लिए उन्होंने सलाह ली और उन्होंने ये सलाह दिया कि आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं जिसमें 100 करोड़ का कुछ बलि बन गया। तो बट उसकी वो करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था।
वेरी गुड, हरि बोल। यस राधा मोहन प्रभु जी। अच्छी बात है, तालियां बजाने से। अनूप जी,
चिंतित हैं क्योंकि युद्ध में जो स्वजनों की हत्या उनसे हुई है उससे जो पाप लगा है, तो उस पाप से मुक्ति के लिए विश्वपिता मैंने उनसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा था, और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए धनराशि चाहिए उतनी उनके पास पर्याप्त नहीं है, और केवल कर लेने का ही उपाय उनके पास काम नहीं है, तो उससे वो चिंतित कर लेना।
हरि बोल। जगदीश प्रभु, कुछ सुना आपने? मैं पढ़ता हूँ आपके लिए और आपसे पूछूंगा भी। 31 और 32 दो श्लोक लिए जा रहे हैं। जिस तरह शुक्ल पक्ष में अनुवाद अनुवाद पढ़ रहा हूँ, आप कहें तो श्लोक भी पढ़ देता हूँ, अनुवाद चलेगा ना। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। 32वें श्लोक का तात्पर्य, इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तात्पर्य भी मैं पढ़ देता हूं। जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था तथा और कोई निधि न होने से राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से भी अधिक धन प्राप्त करे जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेशानुसार संपन्न करना चाह रहे थे। बताइए क्या समझ में आया? और कुछ? धीरे धीरे पढ़ देता हूँ अभी फिर से आपके लिए। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार आगे पढ़ूं अभी तात्पर्य पढ़ूं फिर से? हाँ क्या? अच्छा, जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। कुरुक्षेत्र से युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था तथा और कोई निधि न होने से राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से भी अधिक धन प्राप्त करें जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेशानुसार संपन्न करना चाह रहे थे। बताएं। इसमें शिक्षा क्या प्राप्त होती? जो घटना थी आप लोगों ने सबने बताया, इसमें हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है? वेरी गुड। और कुछ? ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। और कुछ?
उसके लिए उन्होंने जो स्टेट बजट के लिए जो आवश्यक धन संग्रह हुआ था टैक्सेस और फाइनेंस के माध्यम से, तो ऐसा नहीं उसको अपनी मतलब अश्वमेध में लगा दिया, उन्होंने स्टेट के लिए उसको रहने दिया, बाकी एक्स्ट्रा भी लग रहा था उसके लिए।
वेरी गुड। और कुछ? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और कुछ? हाँ बहुत अच्छे।
से देखे हम भी भक्ति में लग जाते हैं क्योंकि हमारे सामने वैसे आदर्श हैं।
वेरी गुड। और कुछ बोलो बोलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है नरसिंह प्रभु, बोलने दे पहले जब
भगवान के लिए है आया हुआ उसको हमें खर्च नहीं करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। अगर हमको और धन चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, बनना पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, लाके कैसे भी काम करना चाहिए, लेकिन जमा हुए धन को खर्च नहीं
जमा हुए धन को खर्च नहीं करना
चाहिए।
हाँ भाई और कुछ उत्तम मोहन प्रभु, कुछ उत्तम मोहन प्रभु, अच्छी बात है। आप सब लोगों ने काफी कुछ अच्छा बताया, गुरु वैष्णव की दया से मैं इन्हीं बातों को थोड़ा सा हाँ एक पॉइंट टू पॉइंट रूप में रखने का प्रयास करूंगा। आप भक्तों की दया से ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहली बात जो यहाँ पर बात बता रहे हैं 31वें श्लोक में कि कैसे महाराज परीक्षित की वृद्धि हुई, सुख सुविधाओं के साथ हुई, देखरेख में हुई, पितामहों की देखरेख में हुई, चाचा ताऊ आदि कोई बचे नहीं थे, इसलिए जो लिखा है वैसा ही बोलना चाहिए, अपनी ओर से नहीं जोड़ना चाहिए। तो जो पितामह के रूप में स्वजन हैं उनके द्वारा उनका पालन पोषण हुआ, अर्थात हमें अपने जीवन में यदि पोषण करना है चाहे किसी भी क्षेत्र के सही, हमें उस क्षेत्र में कोई ना कोई संरक्षक अपने जीवन में अवश्य ही रखना चाहिए। अगर हम संरक्षित रूप से नहीं अपने जीवन को जीते तो हमारे जीवन में पालन पोषण ठीक से नहीं होगा, और अगर हम संरक्षक अपने जीवन में नियुक्त करते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन को जीते हैं तो हमें सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी और साथ में हमारी वृद्धि बड़ी तेजी से होगी। रूपा जी कह रहे हैं शीघ्र ही अपने संरक्षक, जैसे शीघ्र ही चंद्रमा वृद्धि करता है ऐसे शीघ्र ही हम लोगों के अंदर वृद्धि होगी। भक्ति में भी अगर हम आए हैं तो भक्ति में हमें बड़ी शीघ्र वृद्धि हो सकती है यदि हम गुरुजनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन हम सभी एकदम से बड़े होना चाहते हैं, खुद से ही नहाना चाहते हैं, माँ नहलाना चाहती है लेकिन नहीं, खुद से नहाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो बालक फिर संरक्षित नहीं रह पाता। और कोई मार्ग हो या ना हो, भक्ति तो केवल और केवल संरक्षण में ही संपन्न हो सकती। भक्ति व्यक्तिगत प्रयास का कोई औचित्य इतना अधिक नहीं रखती, भक्ति तो नाम मात्र के व्यक्तिगत प्रयास का औचित्य रखती है। नाम मात्र का अर्थात उस व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व अगर आ गया तो भक्ति भी उसका बाधक बन जाएगी, भक्ति से ही उसके अंदर एक अनर्थ पैदा हो जाएगा, उसको भक्ति जात अनर्थ कहते हैं, जो संसार में अन्य अनर्थों से भी कहीं ज्यादा घातक होगा। जैसे भक्ति में भगवान की शरण में क्यों नहीं आ पाते हम लोग, अनर्थ के कारण, अनर्थ बाधा है। ऐसा अनर्थ चार प्रकार से पैदा होते हैं। पहला अनर्थ पैदा होता है उसे पाप से पैदा होने वाला अनर्थ कहते हैं कि भाई, और वो छूटता नहीं, अनर्थ आसानी से जाता नहीं। जैसे कोई दारू पीने लग गया, गुटखा खाने लग गया, झूठ बोलने लग गया, उल्टा सीधा आहार खाने लग गया, घूमने फिरने लग गया, ये सब पाप वृत्तियां हैं। ये सब कैसी वृत्ति हैं, पाप वृत्ति हैं। मूवीज देखने लग गए, उल्टी सीधी इधर उधर चक्कर चलाने लग गए। अब इन्हें छोड़ने जाओ तो चार लोग आपको समझाने के लिए आ जाएंगे कि क्या घास फूस खाओगे अभी जीवन में, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। जीवन में तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पिलाऊंगा तेरे को, तो ऐसे छोड़ कैसे सकता है, हमारा समाज है, तेरी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग तेरे को कहेंगे कि बिल्ली हज को जा रही है अर्थात चूहे खाते रहो। तो गलत काम के लिए भी बहुत सारे लोग समझाने के लिए आ जाएंगे हमें, और हमारे अनर्थ को छोड़ने नहीं देंगे। दूसरा अनर्थ है जो पुण्यों से पैदा होता है। किससे पैदा होना होता है? पुण्यों से, जिसमें सुंदर पत्नी आ जाए, बढ़िया सुंदर मकान प्राप्त हो जाए, बढ़िया उसके पास सुंदर शरीर प्राप्त हो जाए, रूप की सुंदरता आ जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए, इन सब चीज़ों से उसको एक अहंकार पैदा हो जाता है और वो इन सब चीज़ों का भी त्याग नहीं कर सकता। जब पाप से पैदा होने वाले अनर्थों का त्याग नहीं कर पाता तो पुण्य से पैदा होने वाले अनर्थ कैसे छूटेंगे? जब पाप से पैदा होने वाले अनर्थों को छोड़ने जाता है तो मित्र बंधु इतने उसके इकट्ठे हो जाते हैं कि वो उसको छोड़ने नहीं देते, तो पुण्य से पैदा होने वाले अनर्थों को जब छोड़ेगा, उसको बोला जाए कि सुंदरता का मत अहंकार कर, तो वो सोचेगा ऐसा कैसे हो सकता है, सुंदरता मेरे को दी है तो मेरी तो कितनी सुंदर पत्नी से शादी हो सकती है, तो मैं तो इस सुंदर रूप को भोग सकता हूँ। तो उसको कोई, अगर वो छोड़ना चाहेगा भगवान के लिए तो कोई छोड़ने देगा? कितने समझाने आएंगे उसको? सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पहुंच जाएंगे उसको समझाने के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ये सभी क्या है? माया का छुपा हुआ रूप है। ये सब क्या है? माया का छुपा हुआ रूप है। बुद्धिहीन व्यक्ति को वेश्यावृत्ति भी उसको अच्छी लग रही है। माया के कारण, बुद्धिहीनता के कारण माया का प्रभाव इतना हो गया कि बुद्धिहीनता के कारण उसको बात समझ में नहीं आ रही कि गलत है। समझ रहे हो? ऐसे ही पुण्यों से पैदा होने वाली जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां भी उसको समझ में नहीं आएंगी। वो माया का और गहरा स्वरूप है। वो क्या है? माया का और गहरा स्वरूप है। वो और अधिक बड़े चढ़े भक्तों को ही समझ में आ सकता है। जैसे पृथु महाराज थे, उनके यहाँ चार कुमार आगे बोले, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूँ, ये राजपाट तो आपका ही थूका हुआ है, सेना आदि सब आपका उच्चिष्ट है, धरती आदि सब कुछ आपका थूका हुआ है, ये तो आपका है ही, पत्नियां आप ले लो, धन दौलत आप ले लो, सब कुछ आप ले लो, वो तो आपका है ही, मेरा है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे और हम लोग मानते हैं अर्थात, और फिर भी समझते हैं कि हम माया में नहीं, भगवान से दूर हैं, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट माया में, भगवान की प्राप्ति नहीं मतलब माया में है। लेकिन बुद्धिहीनता इतनी नहीं है, थोड़ी बुद्धिमत्ता है अर्थात पाप कर्म में नहीं लगे हैं, पुण्यों में लगे हैं, लेकिन पुण्यों के लिए माया और एक अलक्षित रूप से आती है, लीगल रूप से आती है। माया कैसे आती है? लीगल रूप से। तुम्हारा राइट है पत्नी को भोगने का, तुम्हारा राइट है औलाद पैदा करने का, तुम्हारा अधिकार है संपत्ति का, उसको छोड़ पाना कितना कठिन है। और ये अनर्थ है, पहले वाले अनर्थ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली अनर्थ है। तीसरा अनर्थ है, उसको कहते भक्ति से पैदा होने वाला अनर्थ। भक्ति से पैदा होने वाला जो अनर्थ है, उसमें व्यक्ति के वैष्णवता के रूप में अहंकार आता है, प्रतिष्ठा आती है, धन दौलत आता है, भोग्य पदार्थ आते हैं, और उस समय उसको अनर्थ मान ले, वो माया का और छुपा हुआ रूप है, समझ में ही नहीं आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। कहेगी कोई औरत आकर के, ये आपके लिए बादाम का हलवा लाई हूं मैं बना करके, मैं जानती हूँ आप खाते नहीं, ले चख लीजिए थोड़ा सा, और उस समय उसको अनर्थ समझ करके ना चखे, ऐसा हो सकता है? ऐसा समझ पाए कि माया है, हो सकता है? नहीं हो सकता, आप तो वैष्णव हैं, आप तो बड़े महान भक्त हैं भगवान के। उस समय आदमी को समझ में आया कि मैं वैष्णव नहीं, कोई कहे आपको कि आप तो गुरु गुरुदेव हैं, हम गुरु नहीं भी होते तो भी अपने आप को ज़्यादा नहीं तो शिक्षा गुरु तो मान ही लेते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु मान ही लेते हैं, जबकि पहले गुरु हैं एक प्रकार से सृष्टि में ब्रह्मा जी, उनको नारद जी कहते हैं आप तो गुरु हैं, बोले दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, माया कैसी प्रबल है भगवान की, तेरे को लग रहा है कि मैं गुरु हूँ और मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं गुरु हूँ। बेटा ये माया बड़ी प्रबल है, भागवतम में भाषण देना बहुत सरल है लेकिन इस अनर्थ से बचना कितना खतरनाक है। वही माया ऐसे छुपे हुए रूप में आती है कि हम उससे बच नहीं सकते और हम अहंकार के शिकार हो जाते। अहंकारी व्यक्ति ही भोक्ता हो सकता है और भक्ति सेवा है। उपभोक्ता बन गया मतलब भक्त खत्म, और हम सेवक बनकर के भोक्ता, ऐसे गहरे भोक्ता बन जाते हैं और उसको कोई समझाए कि ये माया है, छोड़ इसको, तू लाख लोग आ जाएंगे आपको समझाने के लिए, ये तेरे से चिढ़ रहा है, तेरी प्रगति से चिढ़ रहा है ये, इसलिए ये सब छुड़ाना चाहता है तेरे को। कैसी विचित्र माया है। भक्ति को, भक्ति की बारीकियों को बड़े स्पष्टता के साथ आचार्यों ने समझाया लेकिन अपने अंदर घुसती कहाँ है। भक्ति तो दीनता का मार्ग है, अहंकार तो इसमें बिल्कुल चलता ही नहीं, लेकिन यहाँ और जितनी भक्ति वृद्धि होगी उतना ही अहंकार से हीन होगा वो, उतना ही दीनहीन होगा। महाप्रभु हैं, जाकर के चप्पलों के स्थान पर बैठे, हम बैठ सकते हैं क्या, स्थान ढूंढते हैं हम तो। जैसे जैसे प्रगति होती है भक्ति मार्ग में, तथाकथित प्रगति, वैसे वैसे हमारी तथाकथित पोस्ट पोजिशन, सुख सुविधाएं, सब चीजों की ओर आगे बढ़ते हैं। कितना दुर्लभ है माया को समझ पाना। माया इतनी कठिन हो जाती, ऐसा भयानक रूप बना लेती है, ऐसा छुपा हुआ रूप बना लेती है, जैसे हम बुद्धिजीवी होंगे माया उतने ही नए नए रूप बनाएगी, सूक्ष्म रूप बनाएगी, जिनको समझ नहीं सकते हम। और इससे भी भयानक एक और अनर्थ है, उसको कहते हैं अपराध से पैदा होने वाला अनर्थ, जो कैंसर की बीमारी है जो कभी जाती नहीं है, मार देती आदमी को, ऑपरेशन करा लो कुछ भी करा लो लेकिन फिर चार दिन बाद फूट की आ जाती हो। कोई भी थेरेपी करा लो, उसको कहते अपराध जनित अनर्थ। जब हम भक्तों के प्रति अपराध कर बैठते हैं, ये इतना सूक्ष्म होता है कि कदम कदम पर घटित होता है। अर्थात माया ऐसी है कि उस समय में उसको ये फील नहीं होने देती, क्योंकि जैसे ही ऐसा बढ़ता है वो सोचता है मैं ही भक्त हूँ, बाकी तो कोई भक्त है ही नहीं। और जब कोई भक्त नहीं है तो किसी को देख करके प्रसन्न होगा वो, किसी को देख करके प्रणाम करेगा, दूसरों को देख करके उपदेश देगा, उपदेश लेगा नहीं, और वहीं से अनर्थ की शुरुआत हो जाती है, और वो अनर्थ जाता नहीं कभी। अब देखो भक्तों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए आचार्यों ने स्पेशल शिक्षा दिया है, लेकिन हम कदम कदम पर उस अपराध को करते हैं और उससे बचने का कोई उपाय ही नजर नहीं आता। हमको लगता है अरे मेरी भक्ति का नाश हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। लहसुन प्याज खा लिया कोई बड़ी बात नहीं है, स्त्री के साथ भोग हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, गलत सपना देख लिया कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब है, जब हम भक्त अपराध करने लग गए, भक्तों को दूसरों को भक्त न मानने लगे, अपने को ही भक्त मानने लगे, ये भयानक अपराध है। बाकी सब तो लल्लू पंजू हैं, लेकिन हम छोटी बुद्धि के हैं इसलिए उनको बहुत बड़ा मानते हैं और जो बड़ी चीजें हैं उनको मानते ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग मतलब सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम, दुनिया का इससे कठिन काम और कोई है ही नहीं। कृष्ण को पाना है ना, कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरी चीज है क्या दुनिया में, कोई चीज नहीं। इसलिए संसार में पाप आकर के घेर ले इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए जीवन में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पाप आकर के घेर ले, पुण्य आकर के घेर ले। भक्ति जात अनर्थ नहीं होना चाहिए, हम निकल जाएंगे। अपराध जनित अनर्थ नहीं होना चाहिए, हम निकल जाएंगे। अपराध जनित अनर्थ इतना भीषण है जो सबका बाप है, वो दर्शा रहा है कि हमें ये मार्ग कितना संरक्षक में जीना पड़ेगा। वो दर्शा रहा है कि ये मार्ग कैसा है, केवल और केवल संरक्षण का मार्ग। इसमें संरक्षक तो कोई बन ही नहीं सकता जब तक कि उसको अपॉइंट ना किया जाए। और अपॉइंट नहीं, मार पीट के अपॉइंट ना किया जाए। हमारे जितने भी आचार्य हैं सबके पीछे जा जा करके महाप्रभु कहते आप गुरु क्यों नहीं बन रहे, आप गुरु क्यों नहीं बन रहे, आप गुरु क्यों नहीं बन रहे। और सब आचार्य यही कहते हैं मैं कहां लायक हूं गुरु बनने की, मैं कहां लायक हूं। और हमें ऐसा लगता है मेरे को क्यों नहीं उसी बनाया, मैं तो इतने साल का सीनियर हूं, मेरे को क्यों नहीं प्रेसिडेंट बनाया, मेरे को क्यों नहीं ये पद दिया, उसको कैसे दे दिया। ये संरक्षक बनने का मार्ग नहीं है, ये संरक्षण स्वीकार करने का मार्ग है। वो अत्यंत सौभाग्यशाली जीव है जिसको सदा सदा के लिए किसी का संरक्षण प्राप्त हुआ हो, और वो अत्यंत खतरे वाले मार्ग पर जा रहा है एक प्रकार से व्यक्तिगत तौर से, जो संरक्षक बन के घूम रहा है। क्या संरक्षक नहीं बनना चाहिए? प्रभुपाद जी लिखते हैं हाँ बन सकते हैं, लेकिन गुरुजनों का स्मरण करते हुए अगर कोई जबरदस्ती तुम्हारे पैर छूता है, उस स्थिति में कोई पैर छूने पर जोर देता है, तो गुरुजनों का स्मरण करो और उनको श्रेय दे दो। हम खुद संरक्षक बन के बैठ जाते हैं, लो भाई पैर छू लो कोई बात, या पैर छूने के बाद खुद ही आशीर्वाद कभी स्मरण में आते ही नहीं कि अरे मूर्ख तू कहां से ऐसा महान बन गया। मनी मन स्मरण करो गुरु जी का, मनी मन स्मरण करो प्रभुपाद जी का। हम तो भर भर के आशीर्वाद देने लग जाते हैं, भूल ही जाते हैं हाँ मैं गुरुजनों से प्रार्थना करूंगा, वो आपके ऊपर कृपा करें। इतना अधिकार है हमारा, हमारा अधिकार अपने बल से कुछ करने का नहीं। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। शरीर हो सकता है कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयास से इसको वर्धित कर ले, लेकिन भक्ति बिना संरक्षक के वर्धित कभी नहीं हो सकती। उल्टा संरक्षण का त्याग करते ही तत्क्षण आपको अपराध लग जाएंगे, इन्हें भक्त अपराध कहेंगे। ये भीषण अनर्थ है, और ये अनर्थ के सपोर्टर बहुत मिल जाएंगे, इस अनर्थ से दूर ले जाने वाले अत्यंत कम होंगे। तो इस श्लोक में ये बहुत सुंदर शिक्षा हुई, तेजी से विकास कर सकते हैं हम यदि संरक्षक अपने जीवन में स्वीकार करते। दूसरी बात जो दूसरे श्लोक में बता रहे, जो महत्वपूर्ण बात है सबसे बड़ी, महाराज युधिष्ठिर ऐसे वैष्णव हैं जिनके साथ कृष्ण हैं, जिनके कृष्ण शांति दूत बने हुए, जिनके कृष्ण ड्राइवर बने हुए, जिनकी यज्ञ में कृष्ण पत्तलें उठा रहे हैं, जिनके यज्ञ में कृष्ण अतिथियों के पैर धो रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश पर, जिनके पैर स्वयं श्री कृष्ण छूते हैं, जिनके यज्ञ में शिव ब्रह्मा आदि सब आकर के बैठे हुए हैं, सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, वो महाराज युधिष्ठिर क्या पापी हो सकते हैं? प्रिय परिकर हैं भगवान की, अनादि काल से साथ में रहने वाले हैं, और कैसी दीनता है अपने आप को पापी समझ रहे। हम भी सुन करके कई बार ऐसा सोच लेते हाँ युद्ध करने के कारण किए गए पापों से शायद उनको पाप लगे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो पापी नहीं है, वो पापों का स्वयं विचार कर रहे हैं कि मेरे को पाप लगे हैं। ऐसे महान भागवत वैष्णव जिनकी तुलना बृहद भागवतामृत में इतने विस्तार से की है, जिसमें कि शिव जी कह रहे मैं तो वैष्णव हुई नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे मैं तो वैष्णव हुई नहीं, इंद्र कह रहे मैं तो वैष्णव हुई नहीं, प्रहलाद कह रहे मैं तो वैष्णव हुई नहीं, नारद जी कह रहे मैं तो वैष्णव हुई, कौन है भैया वैष्णव, घूमते घामते पांडवों तक गाड़ी चली गई, काशी का राजा कह रहा मैं कहां से वैष्णव हूं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम मुझे वैष्णव समझ रहे हो, रात दिन शालिग्राम की सेवा करता हो, और नारद जी ने उसको वैष्णव कहा तो चिड़ गया हो, एक एक के ऊपर जाते 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 बोले वो वैष्णव वो वैष्णव वो वैष्णव, अंत में जाकर के पता चला अरे पांडव वैष्णव है, जो शिव ब्रह्मा आदि से भी बढ़कर है, शिव ब्रह्मा के आगे पीछे भगवान नहीं घूमते, पांडवों के आगे पीछे भगवान घूमते, और वो महात्मा कह रहे मेरे से गलती हो गई, आज किसी को बोलो ना तुमसे गलती हुई है, वो कहता है आपको जिसने बताया ना उसकी गलती अपनी छुपा रहा वो अपनी नहीं बता रहा मेरी बता रहा है, कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, और भक्ति मार्ग ऐसा दीनता का मार्ग है जहां ये शिक्षा दे रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है तो भी गलती स्वीकार करना, बहसबाजी जब तक है एक्सप्लेनेशन जब तक है भक्ति बहुत दूर है, दूर दूर तक नहीं, सब संसार में चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, कौन किसको पूछने वाला है, कौन किसको जानने वाला है, क्या बिल्डिंग क्या नाम क्या प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं रहने वाला है, रहेगा शाश्वत भक्ति के कारण, अगर हम भक्ति से कुछ करके जाएंगे तो हमारे जाने के बाद भी रहेगा, जैसे प्रभुपाद जी ने करके दिया और आज भी प्रभुपाद जी का यश फैला हुआ है, प्रभुपाद जी की टांग खींचने वाले कम नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी महान भक्त थे, भक्ति के प्रताप से जो हुआ कम समय में भी एकदम से शाश्वत हो गया, बिना किसी चीज के भक्ति क्या नहीं कर सकती, लेकिन हम भक्त बने तब ना, हम भक्ति नहीं बनना चाहते, सब संसारी दृष्टिकोण दिमाग में भरे पड़े हैं। महाराज युधिष्ठिर कितने महान भक्त हैं, बोले मैंने स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, हाँ यक्ष मानव अश्वमेधन ज्ञाति द्रोह जिहास है, ज्ञाति मतलब जानने वाले जो हमारे हैं जिनको हम जानते हैं उनके प्रति हमने द्रोह किया है, स्वजनों के प्रति मनु संहिता कहती द्रोह बहुत बड़ा भीषण है पाप है, जबकि उन्होंने द्रोह किया था, ये अजात शत्रु हैं, और क्या सोच रहे हैं मैंने ज्ञात ही द्रोह हो गया मेरे से, और जिहास है अब मुझे उससे मुक्ति पानी है, यहां तो नाक की तरह फुंकारने लग जाते हैं, अगर कोई लीगल पॉइंट पे भी अगर आपने दो बातें बोल दिया ना एकदम से फन ऊपर हो जाता है, भाषणबाजी चालू हो जाती है, ऐसी इच्छा होती थप्पड़ दे धनाधन काल पर एकदम सीधा कर दे मार मार के, क्योंकि यमदूत मारने वाले वैसे भी आगे चल करके बच जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर क्या करें मर्यादाएं हैं, ज्ञाति द्रोह जिहासया यज्ञ करना चाहते हैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं जिसमें खर्चा पानी होता था, आज के समय में क्या खर्चा पानी होगा, पापों से छूटने के लिए कौन सा यज्ञ है, हरिनाम सुमेध सहा, उसकी बुद्धि बड़ी अनुपुण है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धियों का एक पराकाष्ठा वाली बुद्धि है उसके पास, अगर वो संकीर्तन प्राय ही संकीर्तन यज्ञ करता है, यहाँ संकीर्तन को लेकर के आलस्य भर जाता है, खाने के लिए कूद कूद के जाते हैं, कहीं अगर फीस्ट मिल रहा हो तो वहां संकीर्तन हो जाएगा, हाँ और बोला जाए नगर पे थोड़ा गलियों में संकीर्तन करो वहां हाथ पैर टूट जाते हैं, उस संकीर्तन में उस प्रकार का उत्साह नहीं मिलता, संकीर्तन नाम का नहीं हो रहा है संकीर्तन आइटमों का हो रहा है, ये छोटे बच्चे को कौन प्रणाम कर तो प्रणाम वैसे नहीं करेगा, चॉकलेट दिखाओ तो बोले हाँ तुरंत ठोक देगा प्रणाम, तो महाराज कहते तू मेरे को प्रणाम कर रहा था या चॉकलेट को कर रहा था, ऐसे ही हमारी बच्चे जैसी हरकतें हैं, जहाँ खाने पीने और चलो चलो ऋतु माता के यहाँ चलो प्रोग्राम करेंगे चलो पाप नष्ट करने ना हमने पाप खत्म करने जाते ही पहले मारेंगे और कीर्तन के बाद दूसरे प्रकार का एक भोज करेंगे चले, काजा जाओ भाई थोड़ा नगर कीर्तन कर लो थोड़ा सा, धूप बहुत है, पाप बहुत है, नहीं 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 पाप है ही नहीं, जिस दिन शरण में आए उसी दिन पाप खत्म हो गए ना। गीता में भगवान ने कहा हम तो हम सर्व पापेभ्यो, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, फिलोसफी देखो, गीता पढ़ते नहीं, जिस दिन शरण में आए उसी दिन पापों से मुक्त हो गए। क्या भाई कोई जरूरी मैसेज है क्या, जरूरी मैसेज बाहर जाकर के उस पर कर लो एग्जीक्यूशन कर लो। अच्छा 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 अच्छा, तो भागवत से भी ज्यादा जरूरी था नलिन भाई का ये संदेश। तो ये जो वृत्ति है ये दर्शाती है कि कितना हमारी धूर्तता है, धूर्तता की पराकाष्ठा से भरे पड़े, कैसे भगवान मिलेंगे, भगवान सांत्वना नहीं दे पा रहे उनको, कैसी वैचित्री है, साक्षात भगवान शांत नहीं कर पा रहे उनके चित्त को, भक्त कैसा दीन होता है। आखिर में उनके पितामह भीष्म के पास उनको ले गए, पितामह भीष्म ने आदेश दिया, बिना आज्ञा के अपना नहीं थोपता व्यक्ति, मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा, नहीं आदेश दिया तुम ऐसा कर लो, आदेश को स्वीकार किया, अश्वमेध यज्ञ करना है। अब अश्वमेध यज्ञ कहाँ से करें, पैसा धेला है नहीं, पैसे धेले की बड़ी चिंता होती है, स्वाभाविक है चिंता होना, संसार में ये चीजें ऐसी हैं कि जिनके बिना सत्ता भी नहीं है। अभी जैसे बिना माता के कोई संसार में पैदा हो सकता है, इसलिए स्त्री को पिता से भी अधिक श्रेष्ठ दर्जा दिया गया, माँ का दर्जा दिया गया, पहला गुरु माता को बनाया गया, पिता को भी नहीं बनाया गया, तो स्त्री अत्यंत आवश्यक है, ऐसे ही पैसा भी अत्यंत आवश्यक है, जगत का आधार है, लक्ष्मी के रूप में जगत का आधार है, लेकिन यही स्त्री और यही लक्ष्मी सबसे बड़े बंधन का भी कारण है। यदि स्त्री को माँ की दृष्टि से देखा जाए तो उसको पिता की सेवा में लगाया जा सकता है और उसकी सेवा की जा सकती है, वही स्त्री को यदि भोग की दृष्टि से देखा जाए तो खुद भोक्ता बनकर के भोग किया जा सकता है। ऐसे ही लक्ष्मी है, यदि लक्ष्मी को भगवान की सेवा के निमित्त लाया जाए तो वो कल्याणकारी हो सकती है, लक्ष्मी की सेवा मानी जाएगी, और वही लक्ष्मी को अगर अपने लिए व्यक्तिगत उपयोग में लाने लग गए वही भोग का कारण मानी जाएगी और नाश कर देगी, इसलिए कहा जाता है। और ये दोनों ही चीजों में गिरता है आदमी प्राय, ये इतनी खतरनाक है। कहा है चलो चलो सब कोई कहे, चलो चलो सब कोई कहे, बिरलो पहुंचे कोई, बिरलो पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामिनी, एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दो, दुर्गम घाटी दो। एक और कंचन की खाई है, एक और कामिनी की खाई है, कामिनी आ जाएगी तो कंचन मांगेगी सोना दो मेरे को ला करके, और कंचन आ जाएगा तो कामिनी मांगेगा सोना चांदी, मेरे पास धन दौलत है क्या करूं इसका, कहाँ उड़ाऊं इसको, लाओ फिर उस स्त्री के लिए एंजॉय करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, एक फ्लैट इधर लेते हैं, एक इधर लेते हैं, एक इधर लेते हैं, यहाँ तो कोई आता नहीं भक्त देखने के लिए, चलो यहीं पर भोग करते हैं। इसलिए ये दुर्गम घाटियां हैं, इनसे सदा ही विरत रहना चाहिए, इनके प्रति सम्मान अत्यंत आवश्यक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भोग करने का अधिकार नहीं है। महाराज युधिष्ठिर राजा हैं, राजा को जिस पद्धति से ग्रहण करना चाहिए उन्होंने उस पद्धति से ग्रहण किया, कर लिए जा सकते हैं टैक्स के रूप में, और जो प्रॉपरली अगर कर नहीं देते, कुछ गलतियां करते हैं, प्रजा ठीक से नहीं चलती, उनको दंड के रूप में भी पैसा जुर्माने के रूप में लिया जा सकता है, तो उन्होंने जुर्माना और टैक्स दोनों रूप से पैसा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए होना यही चाहिए। तो उन्होंने उन्हीं लोगों, अब अपने पाप हैं, अब अपने पापों का मार्जन कैसे करें, उस धन को कैसे खर्च कर लें, नहीं किया उन्होंने उस धन को खर्च। जिस सिस्टम से आ रहा है धन, ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थितियों में हम लोग भी फंस जाते हैं, चलो डेली निर्वाह के लिए तो धन आ रहा है, इतने मेंबर हैं, इतना धन आ रहा है, भक्ति मार्ग में भगवान की उतनी सेवा हो रही है, अब अचानक से कोई बड़ा काम करना, बड़ा फेस्टिवल करना, अब कहाँ से पैसा आए, चिंता सताती, प्रत्येक व्यक्ति को चिंता सताती। महाराज युधिष्ठिर हम जैसे बद्ध जीवों का आदर्श रख रहे, धन की बड़ी चिंता है। एक और आचार्य कहते हैं भगवान के प्रति समर्पण करो, धन से चीजें नहीं होती, दूसरी ओर धन की आवश्यकता भी है। तो ये बहुत बारीक लाइन होती है डिफरेंस कर पाना, कि हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं कार्य करने के लिए या धन के ऊपर निर्भर है, बहुत पतली लाइन होती है। और ज्यादातर हम इन लाइनों में घूमते रहते हैं, जैसे ही थोड़ा दबाव पड़ता है एकदम से लाइन कूद के धन के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा काम चल जाता है फिर वहां सेटिस्फाइड हो नहीं पाते, संतुष्टि मिलती नहीं, फिर थोड़ी छलांग लगा करके भक्ति के अंदर आते हैं, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहने के लिए आते हैं, फिर दबाव पड़ता है फिर भागते अंदर। भक्त ऐसे नहीं होते, अगर हमारे अंदर भक्ति है तो निश्चित रूप से धन सामने से आएगा। भक्ति बड़ी है, धन बड़ा नहीं, भगवान की शरणागति बड़ी है, धन बड़ा नहीं। प्रयत्न करना पड़ सकता है, धनंजय अर्जुन का नाम पड़ा लेकिन भगवत आज्ञा से विमुख होकर के धन इकट्ठा नहीं किया। कैसे धन इकट्ठा किया? भगवत आज्ञा के अधीन, उन राजाओं से जाकर के धन लिया जो राजा महाराज युधिष्ठिर के शासन को स्वीकार नहीं करते थे, उनके साथ युद्ध लड़े, उनको भोगों से विरत करने के लिए उनकी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाया। ऐसी जगह पर आप डाका भी डाल सकते हो, हरिपाल आदि इसके उदाहरण हैं, चोरी भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आज्ञा के अंतर्गत। सबसे पहली आज्ञा वैष्णव बनने की, हमें स्वयं वैष्णव बनना चाहिए, जिससे हम कोई कार्य करने के लिए जाएंगे उस कार्य का दोष ना लग जाए हमारे ऊपर। हम दोष से तभी बचेंगे जब हम पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित होकर के कार्य करेंगे। यज्ञ जब हमारा सात्विक होगा, जिसमें अफला आकांक्षी होंगे, अफला आकांक्षी मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ, मेरी व्यक्तिगत चाहत ही नहीं है, मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ एक आदेश के निमित्त कर रहा हूँ, जब मैं आदेश के निमित्त करूंगा तो मैं जघन्य से जघन्य कर्म करने पर भी उसका पाप मुझे छुएगा नहीं, और अगर मैं आदेश का उल्लंघन करते हुए पुण्य कर्म भी करूंगा ना तो वो भी पुण्य जनित अनर्थ बनकर के सामने खड़ा हो जाएगा, वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगा, और हमको लगेगा हम बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण के लिए भी प्रभुपाद जी मना करते हैं, कृष्ण के लिए पूर्ण समर्पण उसको कहते हैं। कृष्ण के लिए कोई व्यक्ति अर्पण करता है और कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करता है, कृष्ण चेतना में अपने जीवन को नहीं जीता, प्रभुपाद जी उसको भक्ति नहीं मानते, पूर्ण भक्ति नहीं मानते। गीता में श्लोक है, सुंदर श्लोक है, आप सब लोग हमेशा के लिए इसको याद रखना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः, गीता का 18वें अध्याय का 57वां श्लोक है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम् भवः, मेरे में चित्त लगाते हुए कार्य करो, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, यज्ञ आदि जो कुछ भी तुम करना चाहते हो मेरे ऊपर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें तात्पर्य में, ध्यान दो, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। कैसे कार्य नहीं करता? स्वामी के रूप में। पहचान क्या है, स्वामी कौन है? उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। अगर स्वामी नहीं है तो सेवक है, सेवक का कर्तव्य क्या है? निर्देशन स्वीकार करना। सेवक का कर्म परम कर्तव्य क्या है? निर्देशन स्वीकार करना। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती केवल निर्देशन, ऐसा नहीं कि भाई इच्छा हो जब कर लिया, नहीं हुआ तब नहीं किया, नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं है। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, और जब आदेश पर कार्य करेगा तो कोई हेडक उसको सताएगा? अगर वह सच्चा सेवक है तो उसको चिंता नहीं होगी, इसलिए, और स्वामी है तो उसको चिंता सताएगी। तो प्रभुपाद जी लिखते उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भक्त की सोच होती है, वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। निर्देशन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस श्लोक में मत्परा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। कृष्ण को प्रसन्न करना है तो अपनी भावना से तो प्रसन्न कर नहीं सकते। जैसे कृष्ण रास्ता बताएंगे भाई मैं ऐसे प्रसन्न होता हूं, वैसे ही प्रसन्न कर सकते हो ना, आपकी दादागिरी से थोड़ी कृष्ण प्रसन्न होंगे। कई बार क्या होता है, यार मैं तो खीर खिला रहा हूं गुरुजी प्रसन्न क्यों नहीं? अरे बेवकूफ, जब पानी चाहिए तुम पानी नहीं पिला रहे हो, और जब उन्हें खीर चाहिए तब तुम पानी दे रहे हो, पानी चाहिए तब तो खीर पकड़ा रहे हो, कैसे कोई प्रसन्न हो? जब बोला जाए कि भाई चलो धन एकत्र करने जाओ तब तो तुम आराम फरमा रहे हो, तब तुम भक्ति करने बैठ करके नाटक कर रहे हो, और जब तुम बोला जा रहा है कि इस समय मैं भक्ति कर, बोले नहीं भक्ति मेरे से नहीं होगी, कीर्तन नहीं होगा, कथा नहीं होगी मेरे से, मंगल आरती नहीं होगी, जप नहीं होगा, जिस समय तुमसे जो मांगा जा रहा है उस समय तुम नहीं दे रहे हो, अपनी मनगणंत भावना के साथ तुम प्रचार प्रसार कर रहे हो, मनगणंत विचारधारा के साथ तुम भगवान की कोई भी सेवा को अपना रहे हो, वो सेवा सेवा नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। अब कैसे प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं आगे, और बड़ी बात, जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो, जब वो इस तरह कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए? कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है, उसको अपने आप नेचुरली कृष्ण का चिंतन होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण के लिए सच्ची रीति से काम कर रहा है। अब होता क्या है, हम अन्य चीजों का निरंतर चिंतन में आएंगे कार्य करते हुए भी, क्योंकि वो कार्य कृष्ण के लिए है ही नहीं, वो कार्य तो हमारी प्रतिष्ठा के लिए, वो कार्य तो हमारी मनमर्जी के कार्य के अनुसार चल रहा है, इसलिए अंत में हमें ही अपना ही चिंतन होगा, अपनी मान प्रतिष्ठा का चिंतन होगा, कृष्ण का चिंतन स्वाभाविक रूप से सहज रूप से नहीं होगा। अब विचार करो, हम भजन करते हुए भी चिंतन कर पाते हैं क्या? जब भजन करते हुए ही चिंतन नहीं कर पाते तो कार्य करते हुए चिंतन कहां से होगा? जबकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कार्य करते हुए भी उसको सहज चिंतन हो आता है, उसको चिंतन करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? वास्तव में वो कार्य किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। ऐसा सहज चिंतन जब कार्य में हो रहा है तो नाम में क्यों नहीं होगा? अन्य भक्ति की सीधी क्रियाओं में क्यों नहीं होगा? और सहज होगा। लेकिन होता इसलिए नहीं क्योंकि उसका, प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, यही पूर्ण कृष्ण भावनाम मृत है। अब वो धन का चिंतन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये कृष्ण चिंतन नहीं करते होंगे, लेकिन उस धन के पीछे भी लक्ष्य पूर्ण रूपेण पितामह भीष्म की आज्ञा है और उस आदेश के अनुसार वो क्या कर रहे हैं? कार्य करने जा रहे हैं। बोले यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। पितामह भीष्म कौन है? उनके दादाजी हैं, इसलिए बात मान रहे हैं क्या उनकी? नहीं, 12 महाजनों में से एक महाजन है। भगवान चाहते तो किसी और के पास भी ले जा सकते थे, धृतराष्ट्र के पास भी ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, किसके पास ले गए? पितामह भीष्म। क्यों ले गए? 12 महाजनों में से एक महाजन है, मेरी बात को कहने का अधिकार इनके पास है, इसलिए उनके आदेश को पालन कर रहे हैं एज इट इज। और क्या कह रहे हैं? कोई कहे मैं भी अपने दादाजी की बात मानता हूं, तेरे दादाजी की क्या कीमत है? नहीं, महाजनों का आश्रय लिया जा रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। यही क्या है? कृष्ण भावनामृत नहीं है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। जब तक पूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं होगा, हम अंत समय में भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। अब देखो बहुत बड़ी बात आ रही है, जो प्राय संसार के लोग इसको नहीं समझ पाते। संसार के लोग तो क्या समझेंगे, हम भक्त लोग ही नहीं समझ पाते। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी, और स्पष्ट रूप से बट लगा करके इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किंतु यह ध्यान रहे, क्या कह रहे हैं? किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके, क्या लिख रहे हैं? किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। अब ये बात हमें समझ में आती है क्या? हम तो लोगों के ठीक है, तुम काम करो, तुम्हारा फल भगवान को दे दो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको ला करके किसको सौंप दो? भगवान को सौंप दो, हो गई तुम्हारी भक्ति। क्योंकि हम खुद ऐसे ही हैं, हम खुद पूर्ण कृष्ण भावनामृत के स्तर पर नहीं, किसी दूसरे को कहां से शिक्षा देंगे? प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में लिख रहे हैं पूर्ण कृष्ण भावनामृत क्या चीज है समझाने के लिए। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके, अब संसार में आदमी अपने मनमाने, भक्ति भी मनमानी कर रहे हैं, और क्या सोचते हैं? मैं किसके लिए कर रहा हूं? भगवान के लिए कर रहा हूं। कृष्ण भावनामृत है ये? हो सकता है वो आंशिक है, पूर्ण नहीं। पूर्ण बनना चाहते हो तो भाई मनमाना कार्य छोड़ दो, भक्ति मार्ग में ये तुम्हें शोभा नहीं देता। किसी को कहो भक्ति में शरणागत हो गए, मोबाइल छोड़ दो, माँ बाप छोड़ सकते हैं, मोबाइल नहीं छूटेगा। हाँ, मनमाना जीवन जिएंगे, उल्टा ही भाषण सुन लो उनसे, प्रचार के लिए मोबाइल कितना जरूरी है प्रभु जी आपको पता है? अरे बेवकूफ, प्रचार के लिए आचार कितना जरूरी हो तेरे को पता है? उसका उसको अकल नहीं है। ऐसी मोटी बुद्धि बन जाती है ना आदमी की, जो अपना मन घड़ंत जो उसको कार्य करना है ना उसके लिए बिल्कुल ऐसे चारों तरफ से घेर गाड़ता है वो, चारों तरफ से, और दुनिया भर के उपदेशकों के रेफरेंस देगा वो। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं मन माना उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए, वो आपकी भक्ति आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाएगी। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कितना स्पष्ट है इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। कौन सी भक्ति में आता है फिर? तामसी भक्ति में आता है, राजसी भक्ति में आता है, सात्विक भक्ति नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है, अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है, निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है। फिर उसकी कोई चिंता ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो। क्या नहीं कर सकता हो, सारे संसार का पालन पोषण कर सकता है, अपनी तो चलाएगा। और ये करके दिखाया प्रभुपाद जी ने अपने गुरु जी के निर्देशानुसार जीवन रोजी करके। इसलिए जब हम निर्देशानुसार कार्य करते हैं, जैसा कि महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं और उनको भी धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता वास्तव में होती है, लेकिन धन बरसता है। फिर लक्ष्मी को भगवान छोड़ देते हैं लेकिन लक्ष्मी भगवान को नहीं छोड़ सकती। चंचला होते हुए भी वो भगवान के चरणों का त्याग नहीं कर सकती और भगवान उनकी ओर देखते भी नहीं है। लक्ष्मी जब प्रकट हुई समुद्र मंथन से, सब लोग लालायित होकर के पागलों की तरह उनको देखने लगे, चाहने लगे, मेरे को भरेगी, मेरे को भरेगी, मेरे को। और भगवान विष्णु ने देखा भी नहीं, उनकी ओर जाना पड़ा उनको। इसलिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की आराधना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाए हम, और मन में कम से कम अंदर सोचना तो सीखें। सोचना सीखेंगे तो बहसबाजी बंद हो जाएगी, बहसबाजी बंद हो जाएगी तो हमारे अंदर ग्लानी बढ़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर लहसुन प्याज छोड़ नहीं पा रहा है तो कम से कम उसकी महिमा का गान तो ना करे। उसको ये फील होने लग गया हो कि वास्तव में ये गंदा चीज है लेकिन मेरे से छूट नहीं रही है, तो उसको ग्लानी होगी कि नहीं अंदर? और ग्लानी पूर्वक जब भोग करेगा तो ग्लानी बढ़ती जाएगी और एक दिन वो उसका त्याग कर पाएगा। लेकिन हम बहस करने लग जाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, परिणाम में हम भक्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। बजाय भक्ति में आगे बढ़ने के हम भक्त अपराधी बन जाते हैं। ये इतना खतरनाक हो जाता है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। कोई प्रश्न है किसी का? यस। ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जब नहीं है तो प्रामाणिक वैष्णवों को खोज करके उनका आश्रय लेते हुए उनके आश्रय में जीवन जीना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसी स्थिति का ऐसा भी कहते हैं कि जब कोई प्रामाणिक हमें नहीं नजर आता हो तो आचार्यों की जो वाणी है, प्रभुपाद जी की जैसे प्रामाणिक वैष्णव है उदाहरण के लिए, उन्होंने सारे संसार में कार्य करके दिखाया, तो अगर हम उनकी वाणी का सानिध्य करते हैं, उनके वचनानुसार अगर जीवन को जीते हैं तो हम एक प्रामाणिक वैष्णव के अनुसार ही जीवन जी रहे हैं। उनके ग्रंथों को पढ़ने का मतलब है उनकी एसोसिएशन करना, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई प्रत्यक्ष वैष्णव तो फिर भी लगता ही है जो हमें समय समय पर निर्देशित करता है कि अभी तुम ऐसा करो, अभी तुम ऐसा करो, अभी तुम ऐसा करो, अन्यथा कई बार हमारे जीवन में फिर खिचड़ी बन जाती है। दूसरे शब्दों में जितनी डिग्री में हम प्रामाणिक बन जाएंगे ना, ऑनेस्टली जितना हम फॉलो करने के लिए इच्छुक बन जाएंगे कि वास्तव में मैं प्रामाणिक रीति से फॉलो करना चाहता हूँ, तो भगवान उसके लिए खोजने के लिए अवसर नहीं देते, उसके सामने ले जा करके खड़ा कर देते हैं। नारद जी को खड़ा किया था ध्रुव महाराज के सामने। तो हमारे अंदर ऐसी प्रामाणिक रीति से बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। हम अपने आप अंदर झांक करके देखें हम कितना प्रामाणिक रीति से पालन करना चाहते हैं, है कि कि नहीं। हमें तो लोग किताबें खोल खोल के दिखाते हैं, देखो क्या लिखा है, और फिर भी हम इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, और दृष्टिकोण क्या बन जाता है, हमें कोई प्रामाणिक मिल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, हम प्रामाणिक रीति से फॉलोअर नहीं बनना चाहते। संत को मिले संत और ठग को मिले ठग, प्रामाणिक हम स्वयं बनना चाहें। और कोई प्रश्न है किसी का? यस हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखो, भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति अंदर से अपने आप में ये क्लियर रहता है कि मैं ये कार्य अपने मन मर्जी में नहीं करने की इच्छुक हूँ, मैं किसी निर्देशन में ये कार्य करने जा रहा हूँ, तो जब हम निर्देशन, ऐसा भी नहीं कि निर्देशन कदम कदम पर प्राप्त हो, जैसे प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज से निर्देशन हर कदम पर तो प्राप्त नहीं हुआ। भगवान चेत गुरु के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान है, जो अंदर से प्रेरणा देते ही हैं। और एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अंदर से जो आवाज आती है उसको ही अगर सुन ले तो भी वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होगा। तो अंदर से तो कदम कदम पर हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो भाई। कोई भी व्यक्ति सुबह नहीं उठ रहा हो मान लो, तो उसको सुबह में भी निर्देशन उसी समय मिलेगा अंदर से। मन कहेगा मत उठो, और अंदर से परमात्मा कहेंगे अरे उठना तो चाहिए यार। तो उस समय उस डायरेक्शन को मान लें तो अच्छी बात है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। लेकिन फिर भी बाहर से ही अगर कंक्लूजन के रूप में देखा जाए, और बाहर से अगर हमें गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, और हम निर्देशन का आश्रय लेकर के अगर चल रहे हैं, और आंखें बंद करके चल रहे हैं, आंखें खोल के भी नहीं, आंखें बंद कर करके अगर चल रहे हैं, तो भी उसका पतन नहीं होगा, उसको निश्चित रूप से प्रगति होगी। गुरुजन यहां तक कहते हैं कि गुरु जनों में अगर हमारी निष्ठा है और हम आदेश का महत्व रखते हुए जीवन को जी रहे हैं, और उन्होंने बाई चांस अगर कुमार्ग का आदेश दे दिया, किसका आदेश दे दिया, कुमार्ग का आदेश दे दिया, और हम उस पर दौड़ पड़े, तो भी आपका पतन नहीं होगा। ये इतना सिक्योर मार्ग है। इसमें बस आवश्यकता किस चीज की है कि हम अपने जीवन में विम्सिकल वृत्ति को ना पनपने दें। हम मौका देख करके विम्सिकल वृत्ति को पनपने देते हैं। तो आचार्य क्या करते हैं, हमें एक रूट सिस्टम दे देते हैं कई बार कि तुम एक काम करो, इतना माला निश्चित रूप से करो, इतना तुम सुबह में भजन करो, इतना आरती करो, इतना अध्ययन करो, एक सिस्टम बना दिया उन्होंने। बोले इससे क्या होगा, ये दिन पर दिन प्योरीफाई होता चला जाएगा, इससे कुछ गलत होगा ही नहीं, ये गलत मार्ग पर कदम रखेगा तो वहां से लौटा लेगा अपने आप, क्योंकि इसका प्योरिफाइड होने के कारण बुद्धि इस प्रकार से बनता चला जाएगा कि अपने आप इसको अकल आएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। वो कदम कदम पर ऐसा नहीं कि वो कमांड देने के लिए बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए, नहीं, कदम कदम पर कमांड नहीं, उन्होंने एक सिस्टम दिया। अगर तुम उस सिस्टम को चूक गए तब तुम्हारे लिए बहुत रिस्क बढ़ जाएगा, फिर तुम आज कुछ अच्छा भी करने जाओगे तो भी उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें जो प्रतिदिन की क्रियात्मक रूप से जो निर्देश है, अगर वो प्राप्त हो जाए और उस निर्देश को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाए। इसलिए गुरुजन आप देखोगे तो प्राय ये नहीं कहते ए चल उठ जा, नहीं, उस सिद्धांत बताते हैं उठना चाहिए क्यों। वो क्या बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं, सिद्धांत को समझाते हैं, ऐसे आदेश नहीं देते अभी सो जा, चल अभी उठ जा, हर समय मैं तेरे सामने बैठा हूं, मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो ही पूर्ण कृष्ण भावनामृत बनेगा, नहीं, सिद्धांतों में निपुण बनाते। और जब हम सिद्धांतों में निपुण हो जाते हैं, सिद्धांतों को अंदर ग्राह्य करने लग जाते हैं, जीवन में उतारने लग जाते हैं, तब फिर हमसे कुछ गलत अपने आप ही नहीं होगा, फिर हमारे सामने कोई हो या ना हो। इसलिए हमें सिद्धांतों में पुष्ट होना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। सिद्धांते बलिया चित्ते ना करे आलस, एहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। आपका मन ही लगेगा कृष्ण में, गुरु नहीं लगाएंगे आपको। उनका काम सिद्धांत में लगाना था, अब आपका मन लगाएगा, क्यों? मन ही तो संसार में भटका रहा है, गलत काम मन से ही होते हैं। और जब मन अगर प्योर हो गया तो आपके गलत काम भी शुद्ध हो जाएंगे, समझ रहे? इसलिए नित्य प्रति के जो हमारे निर्देशन है उनको हमें अंगीकार करना चाहिए, जो हमें गुरुजनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? गुरुजन उसको आशीर्वाद की शक्ति देते हैं, जिससे उसके मन में ऐसी वृत्तियां, क्योंकि भगवान तो उसके हृदय में बैठे हैं, तो गुरुजन भगवान के जब भक्त हैं तो भगवान गुरुजनों की इच्छा का पालन करते हैं। अभी जैसे एक हमारे गुरु भाई थे, वो कोमा में चले गए, तो अब कोमा में जाने वाले व्यक्ति को कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? कुछ बोल पा रहा है क्या वो? कुछ भी नहीं, ना कुछ भजन कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तो जो गूंगा है, बहरा है, अंधा है, एक प्रकार से कोमा में पड़ा, वो पड़ा ही रहेगा ना, फिर वो क्या एक्शन लेगा? कुछ भी नहीं। महाराज ने कहा चलो भाई सब लोग अखंड कीर्तन करो, अखंड कीर्तन किया। महाराज वो कहता है कि डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन में आवाज जा भी सकती है हमेशा के लिए, अभी तो है ही नहीं, आगे चल करके कभी होश भी आ गया तो आवाज भी जा सकती है ऑपरेशन करने के लिए, आई साइट भी जा सकती है, स्मृति भी जा सकती है। महाराज कहते भाड़ में जाए ऐसी चीजें, एक काम करो सब लोग कीर्तन करो। अखंड कीर्तन हुआ, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान तो वैसे भी कोमा से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते, इसलिए तो सृष्टि बनाते हैं तो तुरंत जो गुरुजन भी ऐसी शक्ति रखते हैं, उनको होश आ गया, ना उनको ऑपरेशन करना पड़ा, ना उनकी आवाज गई, ना स्मरण शक्ति गई, ना आई साइट गई, और बढ़िया कार्य कर रहे, विश्वास पात्रता के साथ कार्य कर रहे। तो इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब आवाज आ जाती है, दिखाई देने लगता है, तब फिर हम अपना झंडा गाड़ने लगते हैं कि मेरी बड़ी क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। आशीर्वाद की सामर्थ्य है, कृपा की शक्ति से तो हमें मनुष्य शरीर मिला, पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, वास्तव में ये कृपा शक्ति से मनुष्य शरीर मिलता है, और इसमें वैष्णवों की कृपा आ जाए तो फिर भक्ति प्राप्त हो जाती है।